ये आकाशवाणी है। समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है विशेष कार्यक्रम नक्सलवाद के विरुद्ध जन आंदोलन में आकाशवाणी की प्रभावी भूमिका। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ल।
श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका जो कभी वामपंथी उग्रवाद से बुरी तरह से ग्रस्त था, वहां अब लाल आतंक अंतिम सांसें गिन रहा है। बस्तर के जिन इलाकों में कभी बंदूक की गोलियां गूंजा करती थीं, वहां अब स्कूल की घंटियां सुनाई देती हैं। बीते करीब दो वर्षों के दौरान यह अभूतपूर्व बदलाव कैसे आ गया, इसे जानने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बस्तर संभाग के कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा आदि इलाकों की यात्रा की। इस दौरान हमने आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों से मुलाकात की और विस्तार से चर्चा की। आज हम उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुकमा जिले में कभी नक्सली संगठन में कमांडर रही और AK-47 राइफल लेकर चलने वाली माड़वी गंगी ने कुछ समय पहले ही आत्मसमर्पण किया है और अब वे पुनर्वास केंद्र में रहकर कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उनका कहना है कि पहले उनके गांव में बुनियादी सुविधाएं नहीं थीं, इसलिए वे नक्सलियों से प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ गई थीं। लेकिन बीते दो सालों में स्थितियां काफी बदल गईं और अब तो जनता का सहयोग भी नक्सलियों को नहीं मिल रहा है।
पहले तो नक्सली संगठन लेकिन मजबूत था, इसलिए हर समय हमारा गांव में आना जाना करता था, वो जनता को मीटिंग भी करता था, इसलिए संगठन में मैं भी ज्वाइनिंग की थी। क्योंकि पहले हमारा गांव में सुविधा भी नहीं सर, रोड स्कूल ये कुछ कुछ सुविधा रहता है वो नहीं था। सदस्य रहते समय सेंट्री ड्यूटी करना है और खाना बनाना है, वैसा डेली एक एक व्यक्ति को ड्यूटी लगाता है, मैं भी करती थी। और जनता का पहले कितना सहयोग रहता है उतना सहयोग भी नहीं है जनता का, और रहने का जगह भी नहीं है क्योंकि हर जगह में कैंप खोल गया है। इसी वजह से सरेंडर होने का हम निर्णय लिए।
सुकमा जिले के ही भीमा भी नक्सली संगठन में कमांडर थे और अब पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों के कैंप जगह जगह खुलने और लगातार ऑपरेशन चलने की वजह से नक्सलियों पर दबाव काफी बढ़ गया है।
नक्सली संगठन में 2016 PPCM दिया था सर, 2025 जनवरी में DVC पद में दिया था, 2017 में उधरी बेजी कोताशर में शामिल थे सर। आत्मसमर्पण किया था, निर्णय अपना निर्णय लिया था सर। परिस्थिति अच्छा नहीं है, थोड़ा कैंप को 4-5 किलोमीटर दूर कैंप को रखता सर, और जनता भी थोड़ा मदद नहीं, वो खाना पीना भी थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, परिस्थिति ठीक नहीं है सर। ऑपरेशन दिन ब दिन चल रहे, अपना थोड़ा डर लगता है, इसलिए मेरा सोच इधर रहने से मेरा जिंदगी भी पूरा खत्म होना, उधरी सिलेंडर करके अच्छा रहता है, सोच रहे सर। सुविधा भी अच्छा है, खाना पीना सब अच्छा है इधर, और ट्रेनिंग भी आया इधर राजमिस्त्री ट्रेनिंग सीख रहे हैं। डर लगता नहीं सर इधर, उधर थोड़ा ऑपरेशन चल रहा है तो दिन ब दिन, इसलिए थोड़ा डर लगता है सर।
कई लोगों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि नक्सलियों का जीवन कैसा होता होगा, वे कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी रहती है। नारायणपुर जिले की रहने वाली फग्नी उसेंडी ने बताया कि जब वे नक्सली संगठन में काम कर रही थीं, तो लगातार चलना पड़ता था, एक जगह ज्यादा नहीं रुक सकते थे। फग्नी अब जगदलपुर के पंडुम कैफे में काम करती हैं, जो हाथ कभी बंदूक चलाया करते थे वे अब लोगों को चाय कॉफी उपलब्ध कराते हैं।
वहाँ तो हमको रात दिन कब कब तो चलने का रहता था, खाना खा के भी कहीं भी आराम नहीं मिलता था, इतना बड़ा बड़ा फाड़ को फिर पार करके एक गांव छोड़ के एक गांव जाना पड़ता था। फिर पीछे पीछे गश्त था पुलिस लोगों के पीछे, कितना दूर भी जाने का बहुत दिक्कत होता था। इतना थकावट होने के बाद भी हम लोगों को कहीं कहीं पानी नहीं मिलता है पीने के लिए, पानी उनी कुछ नहीं मिलता था। पुलिस का डर है, एक साइड से पानी नहीं मिलता, एक साइड से खाना नहीं मिलता था सर। यहाँ के सिलेंडर करने के बाद मैं 2-3 महीना घर में थी, फिर यहाँ से कॉल आ गया एसपी ऑफिस से, फिर धर्मपुरा में हम लोग को ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिए। वहाँ पे हाउसकीपिंग का मैं ट्रेनिंग की। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतनी बड़े बड़े लोग से इतनी हम लोग को खुशी मिलती है, कोई कोई रोज मिलने आते हैं, इतना बातचीत करके हम लोग को अच्छा लगता है। कभी कभी घूमने जाते हैं हम लोग, वहाँ तो घूमने उमने कभी नहीं मिलता, शांति से सोने मिलता है, सब कुछ आराम, सुबह शाम आराम मिलता है। यहाँ से हम लोग यहाँ 10 बजे काम करने आते हैं तो 2 बजे ब्रेक जाते हैं, तो आराम से सोते हैं 5 बजे तक, उसके बाद 5 बजे उठ के फिर तैयार होकर आ जाते हैं। तैयार छोड़ के आने से अच्छा है सर, उन लोगों का भी भविष्य बन जाएगा, आगे बढ़ेंगे।
बस्तर जिले के रहने वाले लखमू पोयाम बताते हैं कि जब वे नक्सली थे तो दिन रात परेशानी उठानी पड़ती थी और हमेशा जान का खतरा बना रहता था, लेकिन आत्मसमर्पण के बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई है।
5 साल 10 साल के बाद घर में देखने के लिए आते थे, उस समय भी मैं घर में देखने के लिए परिवार को मिलने के लिए आते थे। अभी उधर काम नहीं करना है, घर में रह के अच्छा खेती कमाई करके जिंदगी जीना है बोल के बताया था, खुश हो गए घर में आने के बाद। डायरेक्ट यही कैंप में हम लोग काम कर रहे हैं। सिलेंडर करने के बाद वो सिलेंडर वाला पैसा मिला और रहने के लिए 1 रूम का घर मिला, अभी यही कैंप में काम कर रहे हैं। अभी तो यहाँ अच्छा लग रहा है, उधर रहते समय तो बहुत समस्या है, डेरा में रहते समय भी इधर उधर देखते रहना है, कहाँ से पुलिस आएगा बोल के इधर उधर देखते रहना है, और एक ही जगह नहीं रहना, 1.5 घंटा रहना है, फिर दूसरी जगह जाना है, और रात रात जाना है, अपना सामान बोह के जाना है। गर्मी समय भी बारिश समय भी ऐसे बहुत वहाँ परेशान था, कभी कभी खाने भी नहीं मिलता था। अभी तो यहाँ सिलेंडर करने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, अभी अच्छा लग रहा है सर। उधर रहते समय तो कभी मर जाना है, कोई गोली लगेगा बोल के उधर डर था, अभी यहाँ डर नहीं कुछ नहीं है, आराम से खाना है पीना है सोना है काम करना है, सब लोगों के साथ मिलना है, ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ।
कांकेर जिले के निवासी कुंवर सिंह कोवाची ने बताया कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें समाज और पुलिस प्रशासन ने बहुत मान सम्मान दिया है और अब उनकी जिंदगी बहुत सुखद है।
हमको ड्राइविंग काम सिखाया जा रहा है और उसके अलावा शिल्प कला काष्ठ का भी सीख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा भी दे रहे हैं, बाहर से टीचर लोग आ रहे हैं, 5वीं 6वीं 10वीं ऐसे पढ़ने वालों के लिए वहाँ लाइब्रेरी रखा गया है, उसमें पढ़ रहे हैं, उसे सीख कर हम लोग अपना व्यवसाय कर सकते हैं। वहाँ से अभी यहाँ का एक बेहतर जीवन है, वहाँ एक गुरीला परिस्थिति में यहाँ एक कठिन जिंदगी था, यहाँ ऐसा कोई नहीं है, यहाँ अपना बेहतर जीवन जी सकते हैं। वहाँ हम लोगों को एक मान सम्मान के साथ रखा गया है और सभी लोग ऐसे समाज भी हमको मान सम्मान के साथ देखा जा रहा है। बाकी साथी लोग है उन लोग भी हमारे जैसे पुनः मार्ग पुनर्जीवित के तहत उन लोग भी आ जाए, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौट कर वापस आए कहकर हमारा भी अपील कर रहे हैं।
कभी नक्सली संगठन में सक्रिय रहे दंतेवाड़ा जिले के मोहन बार से आत्मसमर्पण के बाद अब शेष बचे सक्रिय नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि अपने गांव वापस आ जाओ, सरकार तुम्हें आजीविका के लिए ट्रेनिंग देगी और तुम खुद का रोजगार भी शुरू कर सकोगे।
उन लोग से बोलना है कि उधर नहीं रहो, गांव वालों लोग के साथ मिलकर इधर गांव में रहेंगे, उधर आप कहीं भी रहोगे तो फिर कुछ दुर्घटना हो जाएगा तो फिर अकेला मरेगा, तो इधर गांव में कुछ हो जाएगा तो गांव वाले भी देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, पुलिस भी सहयोग करेंगे, सरकार भी देखेगी, सरकार से रोजगार मिलेगी, कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देगी तो अच्छा से कुछ कुछ सीखने भी मिलेगी, तो वो सीख के खुद का काम करके खुद कमाने के लिए सही है।
आत्मसमर्पित माओवादियों को उनकी रुचि के अनुसार कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने बताया कि लाइवलीहुड कॉलेज में सिलाई और राजमिस्त्री से लेकर कई विधाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
वर्तमान में हमारा लाइवलीहुड कॉलेज है, वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए जो पुनर्वासित कैडर हैं, उनको वहाँ पर पहले काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग करने के उपरांत उनकी रुचि के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। महिलाएं जैसे होती हैं, उन्हें अगर सिलाई में इच्छा है तो सिलाई की उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। जो पुरुष हैं उनके या तो कृषि उद्यमी के रूप में वो चाहते हैं या फिर वो राजमिस्त्री के रूप में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोग इच्छुक होते हैं कि उन्हें इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग लेनी है, तो उनकी रुचि के अनुसार से उन्हें RCT के माध्यम से या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, इसके तहत उन्हें एक स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। साथ ही साथ शासन के निर्देशानुसार यह भी प्रयास किया जाता है कि ट्रेनिंग होने के उपरांत उन्हें जो टूल किट्स वगैरह है वो भी हम प्रोवाइड कराएं, ताकि जब वे वापस अपने गांव जाते हैं, अपने निवास स्थल पर जाते हैं, तो उन्हें अगर स्वरोजगार करना है तो उन्हें जो टूल्स वगैरह हैं वो हम यहाँ पर से ट्रेनिंग समाप्त होने के उपरांत प्रदान करते हैं। इसके अलावा जब वो ट्रेनिंग के दौरान यहाँ पर हमारे पास लगभग 3 महीने रहते हैं, उस दौरान हम प्रयास करते हैं कि उनकी आर्थिक जो स्थिति है उसको सुदृढ़ करने के लिए यदि उन्हें किसी प्रकार से अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है, जैसे किसी के खेत में अगर बोर कराना है या उनका KCC का ऋण बनाना है, प्रकरण बनाना है, इस प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो पूरा फोकस ये रहता है कि व्यक्ति जब यहाँ पर से ट्रेनिंग करके जाए तो न केवल उसका कौशल का उन्नयन हो बल्कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन करने के सक्षम हो सके।
श्रोताओं, नक्सलियों के खिलाफ बस्तर संभाग में अभियान तो पिछले काफी लंबे अरसे से चल रहा था, लेकिन क्या वजह है कि बीते 2 सालों के दौरान चमत्कारिक उपलब्धियां हासिल की गई हैं? इसे विस्तार से जानने के लिए हमने बात की बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी से। पेश है इस बातचीत के मुख्य अंश।
आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
जी नमस्कार।
सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार है उसने इस वर्ष यानी वर्ष 2026 के मार्च महीने तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया हुआ है, उसका लक्ष्य निर्धारित किया है। यदि हम बस्तर संभाग की बात करें तो यह लक्ष्य यहाँ पर कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा?
भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का एक स्पष्ट मंशा है और क्षेत्र की जनता का भी ये इच्छा है, नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त हो, इलाका में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित हो और बस्तर क्षेत्र के एक नया पहचान प्राप्त होगा। ये लक्ष्य के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं और शासन ने भी ये निर्धारित किया आने वाला मार्च 2026 तक नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना। नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ और नक्सल मुक्त भारत, इसी दिशा में मजबूती से हम एक एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीच की अवधि में हमको काफी निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ है और इस बढ़त को हम आगे ले जाते हुए आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करने की दिशा में हम सफल होगा।
सर, जैसा आपने बताया कि बीते 2 सालों में एक निर्णायक बढ़त प्राप्त हुई है और हमने भी देखा है कि अभूतपूर्व उपलब्धि सुरक्षा बलों को मिली है, तो बस्तर संभाग में सर इन 2 सालों में, बीते 2 सालों में कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कितने गिरफ्तार किए गए हैं और कितने नक्सलियों को मुठभेड़ में न्यूट्रलाइज किया गया है, यदि आंकड़ा हो तो कृपया हमारे साथ साझा करें।
नक्सल विरोधी अभियान की संदर्भ में वर्ष 2024 और 25 हमारे लिए काफी निर्णायक रहा है। इस अवधि में बस्तर संभाग के अंतर्गत विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात लगभग 550 से अधिक माओवादी कैडर का डेड बॉडी सुरक्षा बल ने रिकॉर्ड किया। इसमें CP माओवादी संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू है, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के रामचंद्र रेड्डी, सुधाकर, के सत्यनारायण रेड्डी और अनेक PLG लेवल कैडर्स, DKSLC लेवल कैडर्स इसमें शामिल है और काफी बड़ी संख्या में AK-47 इंसास, SLR, LMG इस प्रकार का ग्रेड हथियार भी मुठभेड़ के पश्चात बरामद की गई है और 2 साल के अवधि में 2400 से अधिक माओवादी कैडर ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए हैं। इनके शासन के पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का सुविधा भी उपलब्ध किया जा रहा है और आने वाले समय में जो नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से खत्म होने की दिशा में हम बिल्कुल आश्वस्त होकर काम कर रहे हैं।
सर, आप बहुत लंबे समय से बस्तर संभाग में पुलिस के मुखिया के तौर पर काम कर रहे हैं और नक्सलवाद के अलग अलग दौर को आपने देखा है और ये नक्सल विरोधी अभियान भी बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन क्या वजह है कि इन 2 सालों में एक चमत्कारिक उपलब्धि प्राप्त हुई, निर्णायक बढ़त प्राप्त हुई और जिन इलाकों में एक समय पर लाल आतंक हुआ करता था वहां पर बहुत ही आराम से न सिर्फ सुरक्षा बल्कि आम नागरिक भी आवाजाही कर सकते हैं, तो क्या वजह रही है कि ये 2 साल जो है वो पुलिस के लिए ऐतिहासिक साबित हुए हैं सुरक्षा बलों के लिए?
भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन ने एक स्पष्ट रणनीति के साथ नक्सलवादी अभियान की संदर्भ में कार्रवाई का कार्य योजना बनाए हैं। इसी में प्रभावी रूप से नक्सलवादी अभियान संचालित करना जिसके परिणाम हम सबके सामने है। विगत 2 वर्ष में हमको काफी सकारात्मक रिजल्ट्स देखने के लिए मिला है। दूसरा, नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित कर उन क्षेत्र में जहां पूर्व में नक्सल गतिविधि काफी एक्टिव रहा और जिन इलाकों में एग्जीक्यूटिव वैकम और एडमिनिस्ट्रेटिव वैकम रहा, उन इलाकों में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जाकर विकास कार्य को गति देने का काम भी की गई। हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपने आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए सड़क पुल पुलिया निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति, रेशन दुकान प्रारंभ करना है, स्वास्थ्य केंद्र को संचालन करना है, प्राथमिक पाठशाला प्रारंभ करना, इस प्रकार बेसिक फैसिलिटी से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित की गई है। और तीसरा विषय है जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। पहले नक्सल द्वारा शासन प्रशासन पुलिस और सुरक्षा बल के प्रति एक नेगेटिव नैरेटिव सेट कर रखा थे, जल जंगल जमीन के विषय को लेकर क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करते हुए, उनको गुमराह करते हुए इस प्रकार एक नेगेटिव वातावरण निर्मित करके रखा थे। इस बात को बदलने के लिए, एक पॉजिटिव नैरेटिव सेट करने के लिए लगातार कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स आयोजन किए गए थे, जिसके माध्यम से अभी काफी एक मजबूत और मधुर संबंध जनता और शासन के बीच में स्थापित हो रहा है। इन सब तमाम कारणवश अभी बस्तर संभाग के अंतर्गत काफी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हमको देखने मिल रहा है और निश्चित रूप से जो नक्सल गतिविधि आने वाले समय में पूर्ण रूप से समाप्त होकर क्षेत्र की जनता के जैसे इच्छानुरूप बस्तर का एक स्वरूप हम सबके सामने उभर कर आएगा।
सर, एक सवाल और है कि बीते 2 सालों में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और उनको मुख्य धारा में वापस लाने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, क्योंकि फिर उसके बाद में वो एक नई तरह की जिंदगी में अब वो दोबारा प्रवेश ले रहे हैं, तो उनको आजीविका के साधन मुहैया कराने के लिए शासन पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं?
जो माओवादीकर हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आ रहा है, उन्हें शासन भी स्वागत करते, समाज भी स्वीकार करते और स्थानीय प्रशासन पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध की जा रही है। वर्तमान में सभी माओवादीकर जो पुनर्वास हो रहा है उनका स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो कोई टेलरिंग काम कर सकता है या कोई कृषि संबंधित कार्य कर सकता है या कोई कैफे संचालन करने में, हॉस्पिटलिटी या सर्विस सेक्टर में भी काम कर सकता है। और लोग अपना अपना इच्छानुरूप जो अपना स्किल को डेवलप कर उसी को लेकर आने वाले समय एक सकारात्मक जीवन निर्माण करने के लिए, एक सम्मानजनक आमदनी का साधन बनने के लिए दिशा में काम कर रहा है। और हमें पूरा आश्वस्त है जो पुनर्वासित जो माओवादी कैडर है आने वाले समय में काफी एक सकारात्मक शांतिपूर्ण जीवन और एक उनके लिए सम्मानजनक जीवन भी रहेगा, उसी दिशा में हमारा सभी पुनर्वास पॉलिसी फोकस्ड है। उसी का लाभ अनेक माओवादी कैडर जो पुनर्वास कर रहे उनको प्राप्त हुआ और आने वाले समय में भी जो माओवादी कैडर हिंसा छोड़कर आ रहा है उन्हें भी ये पुनर्वास पॉलिसी के सभी प्रकार का आर्थिक सहायता से लेकर अन्य सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा।
सर, बस्तर संभाग की बात करें तो पहले जो है वो बस्तर का नाम देश और दुनिया में बड़ी नकारात्मक वजह से सुर्खियों में रहता था, हिंसा की वजह से, लेकिन अब बड़े पॉजिटिव वे में सकारात्मक रूप से भी उसके लिए जो है वो खबरें बन रही हैं, हेडलाइंस बन रही हैं। ये जो सकारात्मक माहौल है उसको बनाने में बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे जो आयोजन है इनका इसमें कितना हाथ है, कितना योगदान है?
बस्तर क्षेत्र में बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक्स, इस प्रकार के जो कार्यक्रम के माध्यम से इधर की जनता बाहर के दुनिया से संपर्क स्थापित करने के लिए और बस्तर के जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, इधर के जो प्राकृतिक सौंदर्यता है और अनेक ऐसा अनूठी चीज है जो बस्तर के जो ट्राइबल कल्चरल हेरिटेज है, इस सब चीज को जानने के लिए बाहर के लोग भी काफी बड़ी संख्या में बस्तर आ रहा है। इन सब के लिए बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक्स एक माध्यम बना है और आने वाले समय में जो बस्तर क्षेत्र के जो एक पॉजिटिव आइडेंटिटी है वो क्रिएट करने के लिए इस प्रकार का आयोजन शासन के निर्देशानुसार लगातार आयोजित की जाएगी और साथ साथ क्षेत्र की जनता भी इसमें काफी रुचि ले रहा है, ताकि उनका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने क्षेत्र के जो कल्चरल हेरिटेज के बारे में, इधर के जो इको टूरिज्म के लिए एक आभार संभावना है। बस्तर दशहरा दुनिया के एकमात्र ऐसा अनूठा फेस्टिवल है जो 75 दिन चलने वाला एकमात्र जो फेस्टिवल है, इसके बारे में बाहर के दुनिया में लोग जान सकता है, इसको देखने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए इधर आ सकता है। इसी सभी दिशा में लगातार कार्रवाई की जा रही, ताकि बाहर का दुनिया और बस्तर के बीच में एक सेतु के माध्यम से ये सब आयोजन काम कर रहे हैं।
बस्तर संभाग से लाल आतंक को, नक्सलवाद को खत्म करना एक बड़ी चुनौती रही है और जैसा कि अभी आपने बताया कि उस चुनौती को लगभग पूरा कर लिया गया है और नक्सलवाद खत्म होने की कागार पे है। जो मार्च की डेडलाइन है उसको बहुत जल्द ही, मतलब मार्च के पहले ही संभवतः प्राप्त कर लिया जाएगा। जिस तरह से बस्तर संभाग में सुरक्षा बल हर दिन उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं और
आत्मसमर्पण हो रहा है, उसे लगता है कि उसके पहले ही उस उपलब्धि को हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन एक दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा और जो सक्रिय नक्सली हैं या जो सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं वो जब वापस आ जाएंगे, तो उनको पहले की तरह समाज में बनाए रखना, उनको सकारात्मक रूप से जोड़े रखना, मुझे लगता है ये ज्यादा एक बड़ी चुनौती साबित होगी। और समाज के साथ वो मिक्सअप हो, समाज भी उनको अपनाए और वो भी दोबारा गलत राह पे ना चले जाएं, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? फिर वो चाहे गांव में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की बात हो या उनको आजीविका के साधन मुहैया कराने की बात हो, तो किस तरह की बहुआयामी रणनीति, मल्टीप्रॉन्ज्ड स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है उसके लिए, जो अगली चुनौती है मार्च 2026 के बाद की क्या रणनीति होगी?
शासन की नक्सल उन्मूलन की जो कार्य योजना है इसमें सभी प्रकार के एक्शन प्लान को इंटीग्रेट किया गया। ऑपरेशन सॉल्यूशन एक प्रकार है, दूसरा जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी है, और तीसरा जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स है, और चौथा जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है, और इधर का जो क्षेत्र की जनता को भी अपना खुद के इलाका का शांति सुरक्षा और विकास का एक भूमिका बन सकता है, एक योगदान दे सकता है, उसके लिए भी शासन द्वारा लगातार अनेक कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, उनका एक अवसर भी दी जा रही है। जैसा रिक्रूटमेंट्स हो रहा है उसमें स्थानीय लेवल का काफी रिक्रूटमेंट्स भी हो रहा है, और इधर के जो लोग सक्षम बनाए जा रहे हैं ताकि अपना क्षेत्र के विकास किया उनका भी एक पार्टिसिपेशन हो सकता है, और विकास कार्य को अंदरूनी सीमावर्ती और वनांचल क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए भी हमारा एक विशेष जो पैकेज है और अलग अलग स्कीम्स है, शासन के नियत नलनार कार्य योजना है, जिसके तहत जो हमारे प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपने आप में एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर के रूप में काम करते हुए क्षेत्र की मूलभूत सुविधा को जनता तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। इस प्रकार जो नक्सल समस्या जो पूर्व में जो पनपने के जो भी कारण रहा उस कारण को आने वाले समय में पूर्ण रूप से समाप्त करना है, और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए और क्या कुछ हमको कार्रवाई करना चाहिए, उन सब में लगातार एक रोड मैप तैयार की जा रही है, और इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन काफी एक इम्पोर्टेंट चीज है। सभी अभी इतना सकारात्मक परिस्थिति निर्मित हो रहा है, इसमें शासन की मंशा और जो पुलिस और सुरक्षा बल का कार्रवाई के अलावा क्षेत्र की जनता का पार्टिसिपेशन ये काफी एक अहम चीज रहा, उसी को लेकर ही हम इतना सफर तय कर पाए थे, और आने वाला हमारा जर्नी में जो क्षेत्र की जनता का इच्छा और उनकी मंशा और उनकी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करके ही हम मजबूती से एक एक कदम आगे बढ़ेंगे ताकि नक्सल गतिविधि और उनके विचारधारा पूर्ण रूप से समाप्त होगा और बस्तर क्षेत्र शांति के लिए जाना जाएगा, विकास के लिए जाना जाएगा, और इधर के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाएगा, और सभी प्रकार का पॉजिटिव चीजों के लिए बस्तर एक नया आइडेंटिटी लेकर दुनिया के सामने उभर कर आ सकता है। इसी दिशा में हमारा पूरा प्रयास और कार्रवाई जारी रहेगा।
सर, नक्सलवाद जैसी बड़ी समस्या से जब निपटा जाता है, उसको खत्म करने के लिए प्रयास होते हैं, और जब वो खत्म होने के कागार पे होती है, तो कोई भी एक कारण, कोई एक वजह उसकी जिम्मेदार नहीं होती है। जैसा मैंने कहा कि बहुआयामी रणनीति उसके लिए अपनाई जाती है, कई कारण होते हैं। तो आपने बताया कि जो सुरक्षा बलों के कैंप हैं वो अंदरूनी इलाकों में खोले गए, पेट्रोलिंग बढ़ाई गई, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में ऑपरेशंस चलाए गए, लेकिन इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ शासन की जो नई पुनर्वास नीति है उसने कितना महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई, इसके बारे में बताएं।
निश्चित रूप से शासन की जो पुनर्वास नीति है उससे प्रभावित होकर काफी बड़ी संख्या में हाल फिलहाल में अभी माओधिकारी हिंसा त्याग करके मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। इसमें खास बात यह भी रहा, अभी जितना भी पुनर्वास के लिए कैडर्स सामने आ रहे थे वो हथियार के साथ भी आ रहा है। पहले सिर्फ माओधिकारी हथियार अपना डेरा में छोड़कर कुछ संख्या में आते थे, लेकिन अभी इन मास काफी बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से मोदी कैडर AK-47 LMG SLR इंसास इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स को लेकर भी आ रहे हैं। 17 अक्टूबर 2025 हिस्टोरिकल एक इवेंट रहा, बस्तर संभाग मुख्यालय जयदलपुर में एक साथ 210 माओवादी कैडर 153 हथियार के साथ आकर पुनर्वास किया। ये सब शासन की जो पुनर्वास पॉलिसी के ऊपर विश्वास करते हुए और उसकी जो कार्य योजना से प्रभावित होकर माओवादी कैडर इंसा छोड़कर आ रहा है। शेष जो माओवादी कैडर अभी भी जो जंगल में इंसा के रास्ता में है उनसे भी बार बार शासन की ओर से हमारा अपील ये है वो भी सही समय पर सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आना चाहिए, अन्यथा क्षेत्र की जनता के जानमाल को रक्षा करने के लिए हमारा सुरक्षा बल सदस्य समर्पित होकर काम कर रहा है, उनका कार्रवाई को उनको सामने करना पड़ जाएगा, इसलिए समय रहते हुए सही निर्णय लेकर जल्दी वो भी आकर मुख्यधारा में शामिल होना उचित होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विस्तार से चीजें बताई, और मैं जानता हूं कि बहुत व्यस्त समय रहता है, लेकिन उसमें से आपने वक्त निकालकर आकाशवाणी समाचार को ये वक्त दिया और बहुत सार्थक आपने ढंग से चीजों को बताया। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
श्रोताओं,
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि बस्तर का क्षेत्र बहुत समृद्ध है, लेकिन नक्सलवाद इस इलाके के विकास में एक बड़ी बाधा बना रहा और इसकी वजह से स्थानीय निवासियों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पाई।
ये जो बस्तर का क्षेत्र है काफी समृद्ध है, हर दृष्टिकोण से, खनिज, वनोपज और यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, लेकिन ये लाल आतंकवादियों के कारण यहाँ पर हमारे लोगों को बुनियादी सुविधा भी नहीं मिलती थी। 45 से भी ज्यादा वर्षों तक नक्सलवाद बहुत बड़ा बाधक था, लेकिन आज मात्र 2 साल में ही यहाँ पर शांति बहाल हो रहा है। आज नियत नेलानार, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना और पीएम जनमन योजना, उसके माध्यम से हम लोग लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और हमारे गांव आबाद हो रहे हैं। आज जहां गोलीबारी की आवाज आती थी, आज वहां स्कूल की घंटियां बज रही हैं। आज कई वर्षों के बाद में आज 40 से ऊपर गांव में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। ये सब माननीय गृहमंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हो रहा है।
श्रोताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जगदलपुर में आयोजित बस्तर पंडुम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बचे खुचे सक्रिय नक्सलियों से समाज की मुख्य धारा में वापस लौटने की फिर से अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी चेताया कि यदि नक्सलियों ने सशस्त्र संघर्ष जारी रखा तो हथियार का जवाब हथियार से दिया जाएगा।
मैं आज फिर से एक बार कहता हूं कि अभी भी जो बचे कुछ लोग हैं वो हथियार डाल दे, सरकार आपकी सभी प्रकार की चिंता करेगी, सम्मान के साथ आपका पुनर्वसन किया जाए, मगर जो आदिवासी गांव में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बक्से नहीं जाओगे, हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाए।
कभी वामपंथी उग्रवाद की वजह से सुर्खियों में रहने वाला बस्तर अब बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों की वजह से देश और दुनिया में अपनी सकारात्मक पहचान बना रहा है। बस्तर का जनजाति गीत और संगीत जो कभी गोलियों और बम के धमाकों में दब सा गया था, अब उन्मुक्त होकर गूंज रहा है।
अभी आप सुन रहे थे नक्सलवाद के विरुद्ध जन आंदोलन में आकाशवाणी की प्रभावी भूमिका पर विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता विकल्प शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार एकांश रायपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।